देखिएगा अथर्वेद के अंदर कांड नंबर 4 ये आपके सामने है। अथर्वेद कांड नंबर 4 और अनुवाक नंबर 1 में ये है अथर्वेद अक्षयमकरण दास जी त्रिवेदी के द्वारा भाषाभाष्य और ये दयानंद संस्थान दिल्ली के द्वारा प्रकाशित और स्वीकार्य इसका भाषा स्वीकार्य भाषाभाष्य प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली ये उनका दूरभाष और ये महर्षि जी के विचार है कि वेदों को ये बिल्कुल सत्य मानते हैं। इसी में आप देखिएगा ये है अथर्वेद भाषा भाष्यम चतुरथ कांड ये इन्होंने टीका किया अपने जितने इनकी बुद्धि काम की महापुरुषों की क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान न होने से तो अर्थों को भी बदलने की चेष्टा की अनजानपने में। यहाँ देखो ये है ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पुरस्तात है वी सीमित है सूर्योच वेन पर आव स बुद्धिन्या उपमा यस्य विष्ट सत च योनिम असत च विव। अब ऐसे ही ये सब इसके अंदर संस्कृत है। अब इसको हमने अलग से आपको दिखा रहे हैं इस दास ने इसको भाषा भाष्य किया है टीका किया है। इसका ऐसे अर्थ बनता है ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन ब्रह्म माने परमात्मा ने जय प्रगट होकर ज्ञानम माने अपनी सूझबूझ से पुरुषतात माने शिखर में अर्थात सतलोक आदि को सुरुच स्व प्रकाशित अपनी इच्छा से स्व प्रकाशित भी सीमित सीमा रहित वेन उस परम पिता परमात्मा कबीर जुलाहे ने बुनकर अव माने सुरक्षित किया चै तथा स माने उसी बुधिन्या माने मूल मालिक ने योनिम मूल स्थान सतलोक के उपमा माने सदृश मिलते जुलते अस्य यह सत सत है ये अक्षर पुरुष के इनको थोड़ा सा अविनाशी कहा है थोड़ा सा सत्य जैसे पहले आपको बताया और परब्रह्म के लोक चय तथा असत क्षर पुरुष के लोक आदि वी व आवास स्थानों को भिन्न भिन्न विष्ठा माने स्थापित किया उस पूर्ण परमात्मा ने अनादि यानी आदि ब्रह्म ने आदि परमात्मा ने आदि माने सनातन सबसे पहला प्रभु और ये अभी तक जो हम सुना करते थे इन महापुरुषों की बातों को ये इस काल को ही सनातन माना करते थे और इसी को सनातन मानकर कहकर इसको अनादि अजन्मा कहा करते थे जो स्वयं गीता जी में कहता है 4th अध्याय के 5वें श्लोक में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। तो वास्तव में प्राचीन परमात्मा आदि ब्रह्म आदि परमात्मा कबीर परमेश्वर है उसने प्राचीन अर्थात सनातन परमात्मा ने प्रकट होकर अपने सूझबूझ से शिखर में अर्थात सतलोक में स्व प्रकाशित सीमा रहित उस जुलाहे भगवान ने कबीर भगवान ने ताने की तरह तनकर रचना रचकर रचना किया सुरक्षित ठहराया उसी मूल मालिक ने मूल स्थान सतलोक के सदृश उसी परमात्मा ने सतलोक की तरह ही इनको भी बनाया लेकिन वो अजर अमर है ये अजर अमर नहीं है ये नीचे के नासवान है लेकिन ब्रह्म परब्रह्म का जो सात संघ ब्रह्मंड है वो कुछ अविनाशी है कुछ सत्य है इनकी तुलना में जैसे किसकी तुलना में काल के 21 ब्रह्मंडों की तुलना में जैसे आपको उदाहरण दिया था, एक तो मिट्टी का कप होता है सफेद मिट्टी का, ये तो अक्षर पुरुष समझो और इसके लोग समझो ऐसी स्थिति में है, और अक्षर पुरुष के कुछ अविनाशी कुछ सथाई है जैसे स्टील का कप होता है, और वास्तव में अविनाशी पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष के लोक और सतपुरुष है, वो कबीर साहिब है। अब जैसे स्टील को भी जंग लगेगा लेकिन कुछ समय ज्यादा लग जाएगा, ये मिट्टी हो जाएगी जंग लग गए विनाश होगा, लेकिन सोने का विनाश नहीं होता। ऐसी तुलना है कि ये भी कुछ सत्य है कुछ अविनाशी है, कौन? ये परब्रह्म। और ब्रह्म यानी ये ब्रह्म जिसको हम भगवान मानते रहे, इसका वास्तविक नाम कैल है, और इसी को ज्योत निरंजन भी कहते हैं, प्रकाशमय परमात्मा। इसी ने हमें यहाँ जाल में फंसा रखा। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है तो सीधा ही नाशवान है। फिर इसके पुत्र हैं तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आप देख लेना कितने अविनाशी हैं। ये आपने शास्त्रों में भी देख लिया और अपनी आंखों पर भी लिया। अब अथर्वेद कांड नंबर एक का श्लोक नंबर दो सुनाता हूं। अयम माने इसी, पित्रा माने जगत पिता परमेश्वर ने, ये तो इस, अग्रे माने सर्वोत्तम, प्रथमाय माने परानंदनी, राष्ट्रीय राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति को जनु से उत्पन्न करके भुवनिष्ठा लोकों की स्थापना की। उस परम पिता ने सबसे पहले एक प्रानंदनी, प्रथमाय सबसे पहले वाली अपनी जो वहां उनकी प्रानंदनी शक्ति है, उसको उत्पन्न करके फिर लोगों को उसके आधार पर स्थापित किया हुआ है। तस्मा माने उसी परमेश्वर ने, सुरुचे माने अपनी इच्छा से, एतम माने इस, प्रथमाय माने पराशक्ति के द्वारा, हवर अहम एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के द्वारा, ये हवर इसका सीधा अर्थ बनता है हवरम हयम अहम के, एक दूसरे के वियोग को रोके रखने वाला, शरणांतु कभी न समाप्त होने वाला, धर्मम माने गुण, कभी न समाप्त होने वाले आकर्षण शक्ति के, कभी न समाप्त होने वाले गुण, एक दूसरे को खींचे रखने वाले गुण जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको उससे इन सबको धारण किया हुआ दास्यवे इनको अपने रोका हुआ है। अब श्लोक नंबर तीन में है कि प्र सर्वप्रथम देवानाम देवताओं व ब्रह्मांडों की जजे माने उत्पत्ति के ज्ञान को, सर्वप्रथम ब्रह्मांड जैसे कैसे रचे और इस सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वानस्य यानी जिज्ञासु भगत के, यह माने जो बंधु माने वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही, जनीमा माने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को विवक्त माने स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। क्या बताता है कि ब्रह्मणे यानी पूर्ण परमात्मा ब्रह्मणे मध्यात ब्रह्म उज्भार है, उस पूर्ण परमात्मा ने यानी स्वयं ने कबीर परमेश्वर ने ही, अब वो स्वयं ही बताता है आके कि ब्रह्मणे यानी पूर्ण परमात्मा ने अर्थात मैंने ही अपने मध्य से अपनी सर्व शक्ति से ब्रह्म माने अक्षर पुरुष काल को उज्भार माने उत्पन्न करके, विश्व माने सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को, ऊंचे माने ऊपर के सतलोक आदि और नीचे के परब्रह्म ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड, श्रद्धा अपने धारण करने वाली अभी माने आकर्षण शक्ति से पर तस्थव दोनों को अच्छी प्रकार से स्थित किया हुआ है। पर तस्थव का अर्थ है अच्छी प्रकार पूर्ण रूप से बहुत अच्छी ढंग से उनको रोका हुआ है। चौथे श्लोक में है उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही निसंदेह दिव्य माने ऊपर के चारों लोकों को सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अर्थात अकै लोक आदि देव गुणों युक्त लोकों को रत सथा ऊपर के चारों लोकों को तो अजर अमर रूप से रोका हुआ है। वो तो बिल्कुल सत अविनाशी रूप में बनाए हुए हैं। सह माने उन्हीं के सम्मान पृथ्वी माने नीचे के सर्वलोक परब्रह्म के साथ शंख ब्रह्मंड और तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मंड मही पृथ्वी तत्व से अक्षेम माने सुरक्षा के साथ अस्कमायात माने अक्षमायत ठहराया। नीचे के तो सब पृथ्वी के लोक हैं परब्रह्म और ब्रह्म के ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते हैं। ये नाशवान है दोनों ही रोदसी आकाश तत्व पृथ्वी तत्व दोनों ऊपर के रोदसी या नीचे वाले रोदसी का अर्थ दो बनते हैं पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी के तो नीचे के लोक हैं परब्रह्म और ब्रह्म के ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते हैं। ऊपर के जो शब्द गुण शब्द आकाश के गुण शब्द से बनाए हुए हैं वो ऊपर के लोक शब्द से बनाए हुए हैं अर्थात शब्द शक्ति से। शब्द कभी विनाश में नहीं आता आकाश का गुण शब्द है और शब्द शक्ति से ऊपर रचे हुए हैं। शब्द अविनाशी होता है उस अविनाशी रूप से ऊपर के बनाए हुए हैं। महान पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वी अर्थात पृथ्वी वाले भी माने भिन्न भिन्न धाम लोक चय और सदम माने आवा स्थान मही माने पृथ्वी तत् से रज माने प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोक रज जाते माने की रचना करके अस्कमायात अस्कमायात माने स्थिर किया। अब पांचवें श्लोक में है कि उसी मूल मालिक के सर्वप्रथम स्थान पर यानी सतलोक में अष्टंगी माया अष्टा सह माने उसी मूल मालिक मुद्यानात माने मूल मालिक से अभी अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर अष्ट्र माने अष्टंगी माया या सेरा वाली दुर्गा देवी धनु से माने उत्पन्न हुई। जैसे जिस लड़की ने जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल लोक में आने के लिए इस काल के साथ जाने के लिए ब्रह्म के साथ उसका कबीर परमेश्वर ने अपनी सबल शक्ति से लड़की बना दिया था लड़की का आकार बना दिया था माया से और फिर ब्रह्म को उससे पहले एक अंडे में अमृत तत्व से एक अंडे में बनाया था उस आत्मा को प्रवेश कर दिया था। अब यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पहले श्लोक में तो आपको पता चला कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से ही इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई जैसे अंडे में बना था ऐसे ही अथर्वेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 3 ने बताया कि वो ब्रह्म की यानी ब्रह्म की उत्पत्ति काल की उत्पत्ति भी पूर्ण परमात्मा से ही हुई। अब यहाँ बता रहे हैं ये पांचवा श्लोक के उसी पूर्ण परमात्मा से इस अष्टंगी सेरा वाली की भी उत्पत्ति हुई उसी कबीर परमेश्वर ने इसको रचा। अब ये सातवां श्लोक बताओगा कि वो परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म भी उत्पन्न किया सारे ब्रह्म रचे ऊपर के भी नीचे के भी ब्रह्म के भी परब्रह्म के भी और अपने उस पूर्ण ब्रह्म के भी और उसी ने इस दुर्गा की उत्पत्ति अपनी शब्द तय की थी। अब उत्पन्न हुए तस्या माने वही सम्राट राजा अधिराज बृहस्पति जगत गुरु देवता परमेश्वर है ये वही परमात्मा है वही परमेश्वर है। यत माने जिससे अह माने सबका वियोग हुआ अथ माने इसके बाद ज्योतस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल के सुक्रम माने बीज शक्ति वीर्य से जनिष्ठ माने उत्पन्न होकर विप्रा माने भक्तात्मा वी माने अलग से धुमंतु मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक में वसंतु निवास करने लगी। फिर इसने आज्ञा दे दी कि यहाँ निवास करो। अब पहले हम सतलोक में थे और फिर हम अपनी कमजोरी से इस ब्रह्म काल के साथ आकर्षित होकर आगे प्रकृति देवी से और इस काल से फिर हमारी सबकी उत्पत्ति हुई और ये प्रकृति भी उन्हीं से उत्पन्न हुई कबीर परमात्मा का। ये पांचवा श्लोक अथर्वेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 के श्लोक नंबर 5 का यह आपने विवरण सुना।
अब छठे में देखो, छठे में लिखा है कि नूनम माने निसंधे, नूनम निसंधे वही परमात्मा ही, निसंदेह तत्व माने वह पूर्ण परमेश्वर ही, यस्य माने इस काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, भक्त आत्मा को जो शास्त्रों के अनुसार साधना करता है, कहाँ भेज देता है? मह सर्वशक्तिमान देवस्य परमेश्वर के पुरुष माने पहले के धाम माने लोक में अर्थात सतलोक में हीनोति भेज देता है। वही परमेश्वर, वो जगत गुरु सब ब्रह्मांडों का रचने वाला, सबका जगत पिता, वो ही सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले को फिर सतलोक भेज देता है। और वहां जाकर के ये भक्तात्मा अपने पुराने स्थान से जहां से हम बिछड़े थे वहां पहुंच कर फिर इसको पता लगता है कि हम कैसे काल के जाल में फंसे थे और हम वहां कितने दुखी थे, अब काल के लोक में है। फिर देखना कितना खुश होता है उस परमात्मा को पाकर जिसकी सबको तलाश है। पूर्व माने पहले वाले, विशिते माने विशेष चाहे हुए, ऐसा माने इस परमेश्वर को, वह जजे माने पर सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहु अभी बहुत आनंद, सहकम माने के साथ, अर्ध माने आधा, ससन माने सोता हुआ, इतथा माने विधिवत इस प्रकार नो माने सतुति करता है। बहुत खुश होकर आधा सो आधा जागे अर्थात निश्चिंत होकर के उस परम पिता परमात्मा के उस मूल स्थान पर जाकर जहाँ से हम बिछड़े थे, जहाँ हमें सर्व सुख प्राप्त थे, वहाँ जाकर के फिर वो आधा सो आधा जागे, यानी निश्चिंत होकर कि अब कोई खतरा नहीं रहा, ना मृत्यु का, ना कोई बीमारी का, ना कोई व्यापार में घाटे का, तो वहां जाकर के ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, हम सूते चादर तान, कर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सो जाना है, अर्थात वहां कबीर साहब के वास्तविक लोक सतलोक में जाकर ये प्राणी बहुत ही चिंता रहित हो जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जिल के बिंब अगाध गति ही सोते चादर तान। अब सातवां श्लोक बताता है कि वो परमात्मा है कौन। क्या लिखा है कि ये अथर्वाणम पितरम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा अवच गच्छात तवम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देव न दबाते स्वधावान। इसका अर्थ बनता है कि यह जो अथर्वणम अचल अविनाशी पितरम जगत पिता देव बंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु चय तथा नमसा माने वीर नमर पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अब माने सुरक्षा के साथ गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम सारे ब्रह्मंडों का रचयिता, विश्वेशाम माने सारे ब्रह्मंडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायत काल की तरह धोखा न देने वाला, जैसे काल अपने बच्चों को भी नहीं बताता कि वो कहाँ रहता है, किसी को कमल के फूल पर रख दिया, हौस में ला दिया, किसी को शेष नैया शेष की सैया पर, विष्णु जी को वहाँ कोमा में रख दिया, जवान हुआ जब जीवित उसको होश में कर दिया, ऐसे शिव को ये सब को धोखे में रखता है। लेकिन कबीर परमेश्वर वो कौन है, वो परमात्मा जो काल की तरह धोखा नहीं देता। काल की तरह धोखा न देने वाला, स्वाधावान माने स्वभाव गुण वाला यथा ज्यों का त्यों, वो कौन है? सह त्वम कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, वो स्वयं कबीर परमेश्वर है, जिसने ये ऊपर की सारी सृष्टि रचना करी जो कुछ, ये कबीर परमेश्वर है। कबीर माने कबीर, देव माने देव। अब वेदों में प्रवेश से पहले हमने सबसे पहले इस बात को फिर याद रखना पड़ेगा कि ये कहां नादानी करते हैं कि जैसे कबीर साहब को कवि लिख देते हैं, कवि अपसर्ग लगा के, और फिर उसका सर्वोज्ज कांतिमान फलाना ऐसे उनकी व्याख्या कर देते हैं। अब देखिएगा इन महापुरुषों के द्वारा इस वेदों का भाषा भाष्य कैसे किया है। यही वही अथर्ववेद श्री अक्षयम करण त्रिवेदी के द्वारा इसका टीका किया है, और ये वही अथर्ववेद है। अब इसमें वही कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7 दिखाऊंगा सिर्फ। अब देखिएगा इसमें संस्कृत स्पष्ट बता रही है कि यह सह कबीर देव है, जनिता विश्वेशाम जनिता यथा स यथा माने जो कहते वास्तविक सह कबीर देव है, वह कबीर परमेश्वर है। अब इन्होंने कबीर को दो अक्षर कर दिया, ये देखो। अब कवि को कवि अपसर्ग लगा दिए, जबकि यहाँ सीधा कबीर ही लिख देना था। अदेव माने परमेश्वर, यह स्वयं स्वीकार करते हैं, देव का अर्थ है परमेश्वर, ये देखिएगा इनका अपना ही किया हुआ। तो यहाँ कबीर परमेश्वर है ये रख देते, बस सारी कहानी ठीक हो जाती। अब यहाँ आप देखिएगा इस दास के द्वारा वास्तविक व्याख्या क्या, कि जैसे कोई दूध की महिमा गावे और उसकी महिमा में बतावे कि दूध बड़ा पौष्टिक आहार है, दूध ना लिखे, दूध नहीं बोल कहे, संस्कृत लिखी हो कि पौष्टिक आहार असी सवेद असी और सबके पीने योग्य है, सह दूध असी, कोई लिख दे कि वो दूध है, संस्कृत तो ऐसे हो, और उसका सरलार्थकर्ता कर दे कि वो सफेद सफेद है, पौष्टिक आहार है, पेय पदार्थ है, सबके पीने योग्य है, और जहाँ दूध आवे वहाँ दूध ना लिखे, लिख दे वो सफेद सफेद वो पौष्टिक आहार पेय पदार्थ है, बताओ फिर उसको कौन ढूंढेगा। तो वहाँ सब व्याख्या करके ये लिखना चाहिए था कि वो दूध है जिसके गुण गाए। ऐसे ही ये आपको ये ऐसे समझना पड़ेगा जैसे ये यजुर्वेद है, ये आप देखिए जैसे ये यजुर्वेद है, और यजुर्वेद के अंदर सबसे पहले ये देखिए, ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर अपसर्ग लगे हुए हैं, इनको अलग से लिखेंगे तो या दो बिंदी लगा दो और वेद अलग लिख दे, इसका संधि छेद हो गया, और इस दो बंदी की जो आधार रह, अगर ये लाइन नीचे रह लिखकर और नीचे अपसर्ग वो अलंत लगा दे तो भी ये यजुर्वेद है, अपसर्ग लगाएंगे तो भी यजुर ही बोला जाएगा। तो ये है, इसमें यजु का वास्तविक अर्थ, कोई भी किसी चीज का नाम रखा जाता है उसका कोई अन्य शब्द भी बनता है, उसका अर्थ भी बनता है। अब यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियों सतुतियां। अब कोई पूछे कि कोई बहुत इस यजुर्वेद की महिमा गाए कोई कि वो बहुत अच्छी यज्ञ स्तुतियां हैं और सबने उस उन सतुतियों के आधार पर ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, बहुत अच्छी यज्ञ ऋचाएं हैं, बहुत ही कमाल किया भगवान ने, और कोई पूछे वो है कहाँ और उसमें लिखा हो कोई यजुर्वेद में है, यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद में है। यदि उसका ऐसा ही अर्थ कर दिया यजुर्वेद लिखा हुआ हो और उसका अर्थ कर दिया कि वो यज्ञ ऋचाएं हैं, नहीं वह लिखना पड़ेगा वो उस यजुर्वेद में है, वो यजुर्वेद है जिसमें ये ऋचाएं हैं। अब देखो इसी प्रकार मान लीजिए इस यजुर्वेद के ऐसे संधि छेद करें, अब यजुर्वेद के संधि छेद करके लिखें यजुर्वेद, ऐसे लिखने तो सही है तो भी इसी पवित्र पुस्तक का बोध कराती है ये शब्द, और ये भी इसी का कराएगा, ऐसे ही यजु जमाम वेद तो भी ये यजुर्वेद ही कहलाएगा। भी वही पुस्तक पुस्तक यजुर्वेद ही है का बोध है। इस जिसमें यज्ञ स्तुतियों की रिसाएं हैं उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव है, हम उसको कबीर साहेब कहते हैं। साहेब माने देव, परमात्मा, प्रभु, देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, कबीर अल्लाह, कबीर रब, कबीर गॉड, कुछ भी कह सकते हैं, वो कबीर है। जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्मों को काटने वाला, वह काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है, वो बमबारी है, उसको कबीर देव ऐसे लिखें तो भी इसी परमेश्वर का बोध है। ऐसे लिखेंगे तो भी, ऐसे लिख देंगे तो भी कबीर परमेश्वर इसी का बोध है। यहां देखिए नीचे, अब कवि का अर्थ शब्दकोश में ब्रह्मा सूर्य आदि लिखा तो भी ब्रह्मा का अर्थ सृष्टि रचनहार, ये त्रिलोकीय ब्रह्मा तो केवल जीव उत्पत्ति करने वाले के कारण प्रभु ब्रह्मा कहलाता है, लेकिन वास्तव में सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर है। अब इसको याद रखते हुए अब सभी वेदों को पढ़िएगा और सुनिएगा। अब इसी सृष्टि रचना का प्रमाण, अब यही सृष्टि रचना का प्रमाण आपको ऋग्वेद भी देगा। ऋग्वेद जो आधा महर्षि दानंद जी के द्वारा भाषा कहा गया है और आधा किसी दूसरे ऋषि संत के द्वारा, और वो आर्य समाज को मंजूर है कि उसमें जो लिखा वो सत्य है, इसलिए उन्होंने प्रकाशित किया। ये देखिएगा, ये ऋग्वेद, ऋग्वेद और महर्षि दानंद संस्थान द्वारा ही ये भाषाभाष्य है, 9 से 10 मंडल। इसके अंदर इन्हीं के शब्दों में आपको दिखाऊंगा, फिर दास अलग से बताएगा आपको कि कैसे वास्तविकता क्या है। ये देखो सूक्त नंबर 90 और इसका मंडल नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 में, अब इसमें स्पष्ट लिखा है, यानी जो संस्कर देखो, सहसरा शीर्षा, पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष माने भगवान परमेश्वर, सहसरा शीर्षा हजार, इसने संसार के शिरों वाला लिखा, सहसरा शीर्षा का अर्थ होता हजार सिर वाला, इन्होंने संसार के सिरों वाला लिखा है। चलो जैसा भी, आगे देखो, सहसरा अक्षा, ये सहसरा अक्षा हजार आंखों वाला, ये काल की व्याख्या है सबसे पहले श्लोक में इस ब्रह्म की, और सह भूमि, वो इस भूमि वाले लोकों में महान है, और सहसरा पैर वाला, और ये इससे भी बाहर 10 उंगलम, वर्तवा, वर्तवा का अर्थ होता है गोलाकार, वर्तवा माने गोल आकार भी होता है, यानी आच्छादित करके गोल आकार, गोल ढंग से उन चारों तरफ से छाक है उसके ऊपर का गोल आकार में, 10 उंगलम माने 10 इंद्रियों, अर्थ न इसका अर्थ होता है जैसे 10 उंगलियों का अर्थ है कति दोनों हाथों में पूरा पूरा काबू आया हुआ, ये अति तिष्ठत अतिक्रांत करके स्थित है, इनसे भी न्यारा रहता है। अभी तो ये तो इनके हिसाब से सुनाता हूँ कि ये कह रहे हैं कि वो पुरुष माने भगवान परमेश्वर है, जो संस्कृत बता रही है सहस्रा शीर्षा हजार सरों वाला, जैसे गीता जी के अंदर आपने देखा कि अर्जुन को कह रहे हैं कि वो हजार, आप तो हजार आंखों वाले हजार हाथों वाला, तो इसलिए यहां लिखा है। अब दूसरा आपको दिखाता हूं मैं इन्हीं की व्याख्या, ये स्वयं कहते हैं कि ये तो वो परमात्मा है हजार आंखों वाला हजार हाथों वाला, ये तो काल है, और यहां से आगे है कि जो यत माने जो उत्पन्न हुआ जो भविष्य में होगा
ये दूसरा श्लोक है, होने वाला है, और जो वर्तमान में है सर्वम पुरुष है माने वो भगवान परमात्मा ही है, ही है वो परमात्मा ही है जिससे सब कुछ हुआ, आगे होगा जो हो रहा था। और जो ये अमृतव का स्वामी है, ईशान माने स्वामी, यत माने जो, अने माने प्रकृति से अनकारत होता है, ये अन से ही दोनों लोकों में, पृथ्वी लोक वालों में, ये मैं आगे बताऊंगा से बढ़ता है। अब तीसरे में देखो ये स्पष्ट करते हैं, एतावान इतनी अस्य माने इस पुरुष की महिमा माने जगत अधिभूति है, और सह पुरुष माने वह परमेश्वर, तो अतः माने इससे भी ज्ञान माने बड़ा है। अर्थात दो भगवान थे, ये आप स्वीकार कर रहे हैं जो भगवान को निराकार और एक मानने वाले कह रहे हैं कि वह परमात्मा तो उस काल से भी बड़ा है, सह और माने वोर चय माने वह पुरुष माने वह परमेश्वर, तो अतः माने इससे भी ज्ञानवान बड़ा है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आगे देखो। अब श्लोक नंबर 5 में इन्हीं की भाषा में गोलमोल करते करते भी नहीं रोक सके, ये देखिए, तस्मात उस परमेश्वर से अधिष्ठित प्रकृति से विराज है, विराट विराट का अर्थ विराट विराट भगवान रूप अजायता मान उत्पन्न होता है, उसी विराट विराट भी उस परमात्मा से उत्पन्न होता है, विराज अधि विराट के ऊपर अध्यक्ष रूप में है, वो परमात्मा जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है वो तो इस विराट से भी ऊपर, विराज अधि विराट के इस काल के ऊपर अध्यक्ष रूप में भगवान है, पुरुष है, यहाँ भूल गए, ये विचलित हो जाते हैं, यहाँ पर पुरुष को पुरुष ही लिख दिया, वो परमेश्वर इससे भी ऊपर है, ये देखो ये उससे भी ऊपर है। अब देखो पश्चात विराट के पश्चात उस काल के उत्पन्न करने के बाद भूमि माने भूमि वाले, इसके अनंतर पुरे माने नाम नाना नगरों को उत्पन्न करता है, यानी इस काल को पैदा करके उसके बाद फिर उसके नाना प्रकार के लोकों को उत्पन्न करता है। ये छुपाते 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 दबा दबा कर सच्चाई को फिर भी नहीं छुपा पाए, और फिर आगे लास्ट में लिखा 15वें में, ये देखो ये लास्ट वाले श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करते हैं, सूक्त नंबर 90 का। अब आगे देखो 15वें श्लोक में 16वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं। अब इसका भावार्थ ये बनता है कि सभी नाम कमाई करके सच्ची भक्ति करके भक्तात्मा वहां चली जाती हैं जहां पर हम पहले रहते थे, इसका ये अर्थ बना संस्कृत का। अब इन्होंने छुपाने छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्या लिखा है कि दिव्य शक्तियों शक्तियां यज्ञ माने संगीत करण आदि के अथवा अग्नि से यज्ञम सृष्टि रूपी यज्ञ को अजयंत माने करते हैं, और क्योंकि तानी माने वे संसार के धारक बल मुख्य हैं, यानी जो ठीक ढंग से भक्ति करते हैं उन उनमें शक्ति भक्ति आ जाती है और वो उत्तम है, वही मुख्य है, वही सबसे उत्तम है जो सही ढंग से भक्ति करते हैं, और उसी के कारण वे ही महिमान माने महान सामर्थ्य वाले हुए, जो सच्ची भक्ति करते हैं वही महान सामर्थ्य वाले यानी भक्ति युक्त हुए, नाकम माने आनंद पूर्व परमेश्वर को सचंत निमित्त कारण रूप से प्राप्त होते हैं, यानी वो सच्ची भक्ति करने वाले उस परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, यत्र माने जिसमें जिस स्थान में पूर्व माने पूर्व सृष्टि के साध्य माने सृष्टि साधन संपन्न देवा माने देव शक्तियां यानी पहले वाली आत्माएं रहती हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि इस वेद में ये लिखा है कि वो परमात्मा और है जहां सच्ची भक्ति करने से प्राणी चले जाते हैं, और जहां पर पहले की सृष्टि के, ये देखो पूर्व सृष्टि जिसमें कहां चले जाते हैं, जहां पर पहले की सृष्टि के साधन संपन्न या देव शक्तियां रहते हैं। अब भक्तात्मा
ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 को अब सुने, जो इसका वास्तविक व्याख्या बनती है। इसके दो चार श्लोक सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, ये 16 श्लोक हैं इसमें। उसको आप स्वयं पढ़ोगे, परिभाषा प्रभु की ये पुस्तक आपके पास आएगी, अभी शीघ्र ही आने वाली है, विस्तृत इसके अंदर आपको जानकारी मिलेगी। प्रथम श्लोक है, तस्मात उस परमेश्वर सतपुरुष की सब शक्ति से विराट है ये काल, विराट अर्थात सतपुरुष ब्रह्म काल ज्योत निरंजन अजायत है उत्पन्न हुआ। बिल्कुल सीधा सार्थ बना पांचवे का, ये तो पांचवा है, पहला सुनाता हूँ आपको। पहले हम लिखा कि सहसरा शीर्ष पुरुष है, मैंने विराट पुरुष काल भगवान सरपुरुष, सहसरा शीर्षा हजार सिर वाला, सहसरा अक्ष है मैंने हजार आंखों वाला, सहसरा पाता अर्थात हजार पाता पैरों वाला, इस ये 1000 कला का भगवान है और ये 1000 रूप बना सकता है एक बार, ये काल 1000 कला का है। तो ये अपने एक मुख दिखा के दो चार मुख भी दिखा सके, 1000 मुख भी बना सके, 1000 हाथों भी दिखा सके, इसमें इतनी ही पावर है। और ये 1000 सहस्रा अक्षा वाला इसलिए कहा गया वाला, भूमि माने पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मंडों को, विश्वस्त माने सब ओर से, विश्वत विश्वत माने पूरे संसार को ढंग से, दस उंगलम माने अपने दोनों हाथों में जैसे खूब काबू हो जाए, जो बिल्कुल नहीं छूट सके, ऐसे एक 10 उंगलम माने पूरे काबू करके, और उससे वर्तवा माने उसने गोल आकार में घेर के, गोल आकार में यानी गोलदार गोल उसमें बना करके इनकी सती थी, सबको रोका हुआ है। और अति अत्यतिष्ठत इससे भी बढ़कर अर्थात इससे न्यारा भी रहता है। इस श्लोक से के समझने के लिए और इसे आगे चलने से पहले ये आप ब्रह्मंड देखिए, एक ब्रह्मंड का चित्र, इससे आपको सही समझ में आएगा। ये सामने एक ब्रह्मंड का चित्र है, एक अंड या ब्रह्मंड या अंड और पिंड, इस शरीर को पिंड कहते हैं। इस शरीर में ये पूरा चित्र है, यानी सब के लिए चैनल लगे हमारे शरीर में, जस्ट लाइक टीवी। ये नीचे के लोक हैं 7 लोक, और ये पाताल आदि, ये सारे ये पृथ्वी के लोक, पृथ्वी वाले लोक हैं। ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। यहाँ से आगे देखिए, ये एक स्वर्ग लोक है और ये इसकी राजधानी है, स्वर्ग के राजा की, ये बिल्कुल साथ ही है एट ज्वाइनिंग इसके। और ये शिव का लोक है, ये धर्मराय का लोक है, ये शिव का लोक है जिसको ये त्रिलोकीय शिव है, और इधर ये एक ब्रह्मा का लोक है, ये विष्णु का लोक है, ये तो अलग लोक है, ये एक पूरा मिला के ब्रह्म लोक है। ये काल ने और न्यारा जाल बना रखा है, यहीं पर ये काल यहाँ पर महाब्रह्मा रूप में और यहाँ पर महाशिव रूप में, यहाँ पर महाविष्णु रूप में ये काल रहता है स्वयं ही। अब इसने ऐसे, और यहाँ ये कबीर परमेश्वर भी हर ब्रह्मांड के अंदर अपना अन्य रूप बनाकर, जैसे राजदूत भवन होते हैं हर देश के हर देश में, ऐसे ये यहाँ भी रहता है कबीर परमेश्वर राजदूत भवन एक ब्रह्मांड में। ये एक ब्रह्मांड अंड का आपने चित्र देखा, ऐसे ऐसे काल ने के 21 ब्रह्मंड है और 20 ब्रह्मंडों में इसने सभी एक 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 ब्रह्मंड में एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव ऐसे उत्पन्न की हुई है अपनी पत्नी प्रकृति के सहयोग से। अब ये देखिए 21 ब्रह्मंड का चित्र, ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मंड का लघु चित्र। अब ये क्या किया है काल भगवान ने, ये देखो, ये अब यहां देखो, ये एक महाब्रह्मंड है। पहले तो ब्रह्मंड दिखाया आपको, ये महाब्रह्मंड है एक, इसमें ये पांच ब्रह्मंडों का पांच ब्रह्मंडों का ग्रुप करके एक महाब्रह्मंड बना रखा है। अब इसमें देखो एक ये ब्रह्मंड जो आपको दिखा ये है वो ब्रह्मंड है। इसमें एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव और वो सभी लोग 14 लोग अलग अलग से होते हैं। इसी इन सारों में ऐसा इन सबको ऐसे काबू करके 10 उंगलम यानी अपना पूरा काबू करके और इसको इससे बाहर भी रहता अति तिष्ठत ये इससे बाहर भी रहता है और यहाँ भी हर ब्रह्मंड में भी यहाँ ये काल रूप में है हर ब्रह्मंड में ये यहाँ महाकाल रूप में रहता है। और ये इसने अलग से नकली लोक ना रखे हैं सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक। और यहाँ पर ये 12 है उन पुण्यात्माओं को जिन्हों युगों युगों अच्छी साधनाएं की शास्त्र ओम के आधार पर और उनकी अच्छी भक्ति होगी उनको यहाँ रखता है फिर इन्हीं से का दुरुपयोग करता है इन ब्रह्मंडों में हर ब्रह्मंड में बेचकर एक बार भेज देता फिर हजारों सैकड़ों वर्षों तक उनके पीछे दुनिया लगी रहती है गलत साधना बताकर और ये इनको सबको उलझा जाते हैं। ये इसके 12 यम के दूत काल के दूत संत है जो गलत साधना बताते रहते हैं नाम गीता का लेते हैं और उसके विपरीत साधना बताते हैं। अब जैसा कि आपने चित्र देखा इसमें 12 अचिंत भक्तों के स्थान है। वो कौन है? वो पुण्य आत्मा जिन्होंने काफी वर्षों तक पहले युगों में शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार साधना की हजारों वर्षों तक अपने तन मन धन लगा के फिर उनको अच्छी सुविधा देता है वो बहुत ही और अच्छी सुविधा दे रखी उनमें रखता है फिर उन्हीं को यहाँ अपने दूत बनाकर भेज देता है। उनकी पिछली कमाई होती है कुछ शब्द में शक्ति होती है एक आध को राहत मिल जाती है उनकी अपने कमाई मत है। वो नाम लेते हैं वेदों और गीता का और सब उनको गुमराह रखता है वो काल क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम ये करने नहीं देता। काल ने कहा है कि सभी प्राणियों की बुद्धि मेरे हाथ में है अर्जुन जब चाहे इनको खोल दूं जब चाहे इनको बंद कर दूं जब चाहे इनमें ज्ञान भर दूं जब चाहे मैं इनको अज्ञान भर दूं तो सब में अज्ञान भर के महिमा नाम गीता और वेदों का लेते हैं और साधना सारी उनके विपरीत बता रहे होते हैं। ये काल के दूत लिखा है कबीर साहब ने। अब देखिएगा अभी आपके सामने आ गया दूसरा प्रथम श्लोक ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 और श्लोक नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा स्पष्ट करने के लिए एवं माने कुछ सही तौर पर पुरुष है एवं पुरुष कुछ भगवान सा लगता है भगवान जैसा है कुल कुछ कौन वो अक्षर पुरुष जैसे एक तो कप हो सफेद मिट्टी का बना हुआ और एक हो सटील का तो सटील का उस चीनी वाले सफेद मिट्टी वाले से कुछ मजबूत सा लगता है सथाई है लेकिन वो वास्तव में सथाई नहीं है वो भी सथाई नहीं है लेकिन उसकी तुलना में बहुत कुछ है। ऐसे ही वास्तव में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो कभी विनाश नहीं होता। अब यहाँ आगे इसमें लिखा है कि कुछ सही तौर पर भगवान है वो अक्षर पुरुष परब्रह्म है और इदमन इस यत मन जो भूतम मन भूहा है और आगे भी भविष्य में जो होगा सर्वम मन यह यत मन प्रयत्न से अर्थात मेहनत के साथ अनेन माने अन से अतिरोहति विकसित होता है ये अक्षर पुरुष भी उत माने संधे युक्त अमृतवश्य ईशान यानी ये अक्षर पुरुष भी ये पार ब्रह्म भी संधे युक्त मुक्ति देने वाला है पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकता। अब ये एक श्लोक आगे है इसमें अस्य मान इस अक्षर पुरुष की तो एतावान मान इतनी ही महिमा प्रभुता है इस अक्षर पुरुष को क्यों अविनाशी भगवान का इसकी तो इतनी महिमा है कि ये तो कुछ भगवान जैसा लगता है ये खाता नहीं ये जीवों को नहीं खाता और कुछ सथाई भी है और वहां रहने वाले हंस भी भक्तात्मा भी ज्यादा समय तक यहाँ के करोड़ों यहाँ पर सैकड़ों ब्रह्मा मर जाएंगे विष्णु मर जाएंगे, शिव मर जाओगे, उससे भी ज्यादा अच्छी उम्र इससे अक्सर पुरुष के लोक में जीव को मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु में, इसलिए उनको कुछ अविनाशी भगवान जैसा माना जाता है। और इससे की तो इतनी ही महिमा है, इससे आगे पुरुष माने पूर्ण परमेश्वर तो अतः माने इससे भी ज्ञान माने बड़ा है, वो तो इससे भी आगे है। ज्ञान माने बड़ा है, विश्वा माने समस्त भूतानी माने अक्षर पुरुष और चर पुरुष इन लोकों के अर्थात सतलोक जितने भी प्राणी हैं, अस्य माने इस पूर्ण परमात्मा के नी अक्षर पुरुष का पाद माने एक पैर है, अर्थात ये तो एक हिस्सा है इनका इस परमेश्वर का जिसमें ये पूर्ण प्रभु है। किस ब्रह्मंड काल के सात संघ ब्रह्मंड परब्रह्म के और इनमें जितने प्राणी रहते हैं ये समझो उस परमात्मा का एक अंश है, एक पैर समझो का अंत तो मेरे पैर के तुल्य है, ऐसी उपमात्मक है ये बात। ऐसे मान इस परमेश्वर के त्रिमान तीन देवी मान देवलोक ऊपर के सतलोक अलख लोक अगम लोक अमृतम अविनाशी यानी दूसरा पाद माने पैर समझो, वो उसका दूसरा हिस्सा है तो उसी के निर्मित इसलिए उसी के अंतर्गत है, ये उस परमेश्वर का ही अंतर्गत है। अब पांचवा देखो, पांचवें श्लोक में लिखा है कि तस्मात मानुष परमेश्वर सतपुरुष की सर्व शक्ति से विराट है माने विराट युग काल भगवान चर पुरुष अजायता माने उत्पन्न हुआ है, पश्चात माने इसके बाद विराज माने विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से अधि माने बड़े, इस काल से अधि पुरुष है विराज अधि पुरुष है, इस विराट से भी तब बड़े यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने भूमि माने भूमि वाले ब्रह्म तथा परब्रह्म के अतीत अत्यरिचित अच्छी प्रकार रचा लोगों को अच्छी प्रकार रचा, अतः माने तब पूरे माने छोटे छोटे लोग स मानुष परमेश्वर ने ही जाता माने उत्पन्न किया, उसी परमात्मा ने उस पर अक्षर पुरुष और इस नीचे के उस अक्षर पुरुष के साथ संघ ब्रह्मंड और नीचे के इस काल के 21 ब्रह्मंड उसी परमात्मा ने ही स्वयं ही उनको रच कर और न्यारे न्यारे दिया। अब यहाँ पर सप्त और त्रिसप्त, सप्त और त्रिसप्त, त्रिसप्त माने 21 ब्रह्मंड तो काल के और सप्त उस सप्त संघ सात संघ ब्रह्मंड अक्षर पुरुष के, अभी दिखाता हूँ इसी के श्लोक नंबर का चार रह गया बीच में, पांचवा आपको सुना दिया। चौथे में लिखा है कि पुरुष माने यह अविनाशी परमात्मा ऊर्ध्व माने ऊपर त्रि माने तीन लोक जैसे सतलोक अलख लोक अगम लोक जो बाद में रचे है मालिक ने, उसके पाद माने पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में, वो जो पहले बताया ना ऊपर के लोक तो इसके एक अंग है यानी अविनाशी अंग है, उसमें उद्वत्त माने विराजमान है, वो तो परमात्मा वहाँ रहता है ऊपर के लोकों में रहता है तीनों में आकार रूप में। और अस्य माने इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का पाद माने एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप पुनः माने फिर ई माने यहाँ भवत अभवत माने प्रकट होता है, और फिर ऊपर के तो वो वहाँ मालिक रहता है और फिर नीचे के भी उसी से प्रकट होते हैं, तथा माने इसलिए स माने वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा असनान असनान माने न खाने वाला और सनेन माने खाने वाले, सन माने खाने वाला, असन और सन खाने वाले और न खाने वाले से भी खाने वाले और न खाने वाले, खाने वाला तो यु काल चर पुरुष 100,000 जीवों का रोजा अर्क रहे और न खाने वाला ये अक्षर पुरुष वो खाता नहीं लेकिन वहाँ भी जन्म मरण है, लेकिन इससे काफी लंबी उम्र है वहाँ पे और सुख भी इस काल से ज्यादा है, इसलिए उसको कुछ भगवान जैसा कहा जाता है लेकिन वो भी अविनाशी नहीं है। यही गीता जी के 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक बताता है कि अक्षर चाहे अक्षर है द्वि पुरुषो इमे लोके, इन पृथ्वी वाले लोकों में दो भगवान माने जाते और दो सतिथि जीव की है, ये सतुल शरीर में नाशवान है अविनाशी जीवात्मा कहा जाता है और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी के में कहा है कि वास्तव में परमात्मा तो अन्य है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको भगवान कहा जाता है वास्तव में वो परमेश्वर है और तीनों लोकों में प्रवेश करके वही अविनाशी परमात्मा सबका धारण पोषण करता है, उसी का प्रमाण यही ऋग्वेद दे रहा है। खाने वाले और न खाने वाले से अभिमाने ऊपर विश्वंग माने सर्वत्र विक्रमात माने सबके ऊपर व्यापक है, यानी ब्रह्म के भी और परब्रह्म के भी सभी लोकों का पर वो प्रभु है। ये देखो एक ब्रह्मंड ये पूर्ण चित्र देखिएगा, ये है इस काल के 21 ब्रह्मंड जो अभी पहले पूरा दिखा था, ये 7 संख ब्रह्मंड है इस अक्षर पुरुष के, ये क्षर पुरुष के ज्योत निरंजन के काल के 21 ब्रह्मंड, और ये सारे लाल घेरा दिखा इसके अंदर, ये पृथ्वी के अंदर ये परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मंड। अभी इसी में दिखाऊंगा आपको त्रि और त्रिसप्त, तीन सप्त और त्रिसप्त, ये फिर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब इन सबके ऊपर प्रभु ये है। इस श्लोक में ये लिखा है कि वो परमात्मा इस खाने वाले खाने वाला काल न खाने वाला परब्रह्म ये सबके ऊपर विक्रांत माने सबके ऊपर छाया हुआ है, यानी सबके ऊपर उसका प्रभु है और सब में व्यापक है, कुल व्यापक कबीर परमेश्वर है। और ऊपर के ये तीन लोक अलग से है, अलग लोक, अगम लोक और अनामी लोक, इसी परमात्मा का ही हिस्सा अर्थात अंग है, ये ऊपर विराजमान रहता है। अभी आपने ये चित्र देखा जिसमें 21 ब्रह्मंड त्रिसप्त, ये वेद बताएगा त्रिसप्त, त्रिसप्त माने 21, 7 किया 21, त्रिसप्त 3 × 7 = 7 और एक सप्त, सप्त व त्रिसप्त, इन सब की व्याख्या, क्योंकि यहाँ पर हिंट है, यहाँ पर संकेत दिए जाते हैं जब शाने, क्योंकि वेदों के कुछ ऐसे अंग हैं जिनमें बहुत ही अच्छे जब ज्ञान हो जाता है फिर उनको बच्चों को, जैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते करते उच्च क्लासेस में चले जाते हैं उच्च कक्षाओं में, तो वहाँ उनको फिर इशारों से समझाया जाता है और इशारों को समझ जाते हैं। अब यहाँ लिखा है उसी ऋग्वेद सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 के श्लोक नंबर 14 में, ये आप देखिए, ये परिभाषा प्रभु की, इसके अंदर बिल्कुल जैसे गीता में लिखा है अलग अलग से संधि छेद भी किए। ये श्लोक नंबर 14 है, इसमें है नाभ्या, श्लोक नंबर 15 है, देखो 15 ऊपर इसी में, ये श्लोक नंबर 15 है, 15 में है ये, क्षमा करना, सप्त अस्य आसन प्रीध है, प्रीध है माने गोलाकार प्रीधि में वृत्ताकार, त्रिसप्त ये त्रिसप्त 21, समीध है कृत है देवा यत, यगम तनवा तनवान अबंधन पुरुषम पुसुम। अब यह देखो अनुवाद है कि सप्त 7 संख ब्रह्मंड पर ब्रह्म की तथा काल के त्रिसप्त 21 ब्रह्मंड काल के, समीध माने दुख रूपी आग में से दुखी, कर्ता माने करने वाले, प्रीधाय गोलाकार घेरा में सीमा में है, ये तो इनकी गोलाकार सीमा सबकी, जो आसन माने विद्वान है, यत माने जो, पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की, यगम माने विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, पशु माने पशु बलि के पशु रूपी, बलि का पशु देव माने भक्तात्माओं को तनवान काल के द्वारा रचे फैलाए
बंधन जाल से ए बंधन बंधन रहित करता है, अर्थात छुड़वाता है वो बंदी छोड़, छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। ये देखिएगा, अब इस 15वें श्लोक ने स्पष्ट किया है कि इन 7 संख ब्रह्मंड, सप्त संख, 7 संख ब्रह्मंड पार ब्रह्म की तथा काल के 21 ब्रह्मंड काल के ब्रह्म के समीदय माने दुख रूपी आग से। 7 संख ब्रह्मंड तो काल के हैं ना, उसके परब्रह्म के हैं, और 21 ब्रह्मंड इस काल के हैं। त्रिसप्त काल के 21 ब्रह्मंडों के समीदय माने दुख रूपी आग से दुखी, इन दोनों ही लोकों में जीव वैसे तो दुखी है, क्योंकि जन्म मरण है, पशु जूनी है, तो दोनों में दुख है। इसमें इतना ज्यादा दुख है कि ये काल खाता है तपत शलापा भून के, और वो परब्रह्म खाता नहीं, बस इतना अंतर नहीं, दुखी दोनों ही है। समीदय माने अग्नि रूपी दुख रूपी आग के कर्ता माने करने वाले से दुखी करने वाले कर्ता है। प्रीत है यानी प्रीथाय माने गोलाकार में, प्रीत है उस गोलाकार सीमा में है, उनकी ये सीमाएं हैं, ये तो हद है। आसन माने विद्यमान है, यत माने जो, पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा, यत माने जो, पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की यज्ञ माने विधिवत साधना भक्ति पूजा करता है वह पशुम, पशु माने काल का बलि का बकरा बना हुआ, काल का बलि का बकरा बना हुआ अर्थात इस काल के लोक में फंसा हुआ देव माने भक्तात्मा को तनवाना काल के जाल फैलाए हुए जाल से ए बंधन बंधन रहित करता हूँ परमात्मा, इसको बंधन रहित करता है। श्लोक सुना, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का। अब इसमें क्या बताया कि जो उस पूर्ण परमात्मा की विधिवत साधना करते हैं उनको, और जो इन 21 ब्रह्मंड काल के और 7 संख ब्रह्मंड परब्रह्म के, इनमें बलि का बकरा बना हुआ है, बंधा हुआ है, उनको अबंधन करता है इस काल के द्वारा फैलाए गए जाल से, अबंधन करता है वो परमात्मा। अब 16वां श्लोक जो कि आपको मैंने ऋग्वेद महर्षि दयानंद संस्थान द्वारा भी जो भाषा भाष्य था वो भी दिखाया कि उसमें भी उन्होंने छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए सच्चाई को, स्वयं मानते हैं कि परमात्मा तो कोई और है जो काल से ब्रह्म से विराट से भी बड़ा है, और उधर से अपना विचार देते हैं ये आर्य समाज के अनुसार ज्ञान प्राप्त भक्तात्मा, वो कहते हैं वो तो निराकार है, प्रभु एक है, दूसरा है ही नहीं। और स्वयं यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में स्वीकार करते हैं महर्षि दयानंद कि वो परमात्मा तो जो ऊपर के लोकों में, दिव्य लोकों में, सूर्य लोक में रहता, वो तो परोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म केवल स्वर्ग तक ले जा सकता हूं। अब पहले यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद ये पूरा का पूरा महर्षि दयानंद जी द्वारा ही भाषा भाषा है, और इसके अध्याय नंबर 40 के 44वें अध्याय और 70वें श्लोक में आप देखो, ये 16 है, आगे 17 श्लोक है, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के शब्दों में देखना, जिस हिरेमान ज्योतस्वरूप पात्रेण रक्षक मुद से सतस्य अविनाशी यथार्थ कारण से अभितम अच्छादित मुखम मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यह माने जो, ऐसा वो माने वह है आदित्य, ये देखो आदित्य, आदित्य माने वो कबीर परमेश्वर, आदित्य का अर्थ सूर्य, प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमेश्वर है, स माने वह है परोक्ष
असो माने परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है। अपने आप कहते हैं सह पुरुष है माने परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है, सह माने वह है, एक और परमात्मा है और वो तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम माने मैं, युकाल बोल रहा है, खम खम का अर्थ स्वर्ग होता है, स्वर्ग भी होता है। ब्रह्मम, अहम माने मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म रूप हूँ, ये मतलब अहम मैं ब्रह्म। इन लिखा सब गुणों कर्म के स्वरूप करके अधिक हूँ, ओम सबका रक्षक जो सबका ओम, ऐसा नाम जानो। अब ये सिद्ध करना चाहता था ये दास के वेदों के अनजान शब्दार्थ कर्ता भी उलझ पुलझ हो गए। बता रहे हैं कि परमात्मा कोई और है, वो गुप्त है, और काल कह रहा है मैं तो केवल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष हूँ और स्वर्ग तक की उपलब्धि करा सकता हूँ। अब यहाँ इन्होंने ही अपने ही भाषा में ऋग्वेद में भी लिखा है, स्वीकार भी किया है कि वो परमात्मा, वो भक्तात्मा जो सत भक्ति करते हैं, वो उस सत भक्ति के प्रभाव से उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई पहले भी पहले की सृष्टि है, यानी सतलोक पहले बना हुआ है।